विनोद जी स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को एक एक करके समझा दीजिए कि बजट का उनकी जिंदगी पर क्या असर होने वाला है। जैसे सबसे पहले तो ये बताइए कि एक औसत आय वाले ऑस्ट्रेलियाई घर को क्या मिला है और क्या उससे लिया गया है।
हाँ, जैसे मान लीजिए औसत परिवार है जिसमें पति पत्नी है, दो बच्चे हैं और 50 से 60 हजार डॉलर कमाता है मान लीजिए साल भर में, तो इसमें सबसे बड़ा जो इमीडिएट दिखेगा वो है कि ये जो मेडिकेयर लेवी बढ़ा दी है सरकार ने, मेडिकेयर लेवी पहले 2% थी, अभी 2.5% कर दी है टैक्सेबल इनकम पे। तो कहने का मतलब है 200 से 300 डॉलर टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। एक तो ये सबसे पहला और इमीडिएट असर इसका पता चलेगा। लेकिन इसका जो अगर आप फायदा देखिए तो ये है कि अगर छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं तो ये इनडायरेक्ट रूप से उनको वापस मिलेगा, इन द सेंस कि स्कूल की फंडिंग बढ़ रही है तो उनको जो है बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, स्कूलों को जो है और बिल्डिंग वगैरह बनाने में हेल्प मिलेगी इससे, तो काफी पैसा स्कूलों के लिए कमिट किया है सरकार ने। दूसरा जो है एक बड़ा रिफॉर्म किया है ये, अगर मतलब एक औसत परिवार है जो भी घर नहीं खरीदा है और घर खरीदने वाला है तो उसके लिए एक फायदा है इसमें, क्योंकि अभी सरकार ने ये बोला है कि आप सैलरी सेक्रीफाइस करके अपने घर के डिपॉजिट के लिए सेव कर सकते हैं, जिसमें आप 15,000 डॉलर तक एक साल में सैलरी सेक्रीफाइस मतलब बिफोर टैक्स इनकम से डाल सकते हैं, तो ये उनको एक फायदा दिखेगा।
भारत से स्टूडेंट्स बहुत आते हैं ऑस्ट्रेलिया, उनके ऊपर आप क्या असर देखते हैं?
एक्चुअली स्टूडेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी इस सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं तो मुझे मैंने ज्यादा डिटेल में इसको देखा है। तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली कुछ भी अच्छी खबर नहीं है इस बजट में, बल्कि बुरी खबर बहुत ज्यादा है। पहली चीज तो यह है कि अगले साल यूनिवर्सिटी फीस बढ़ने वाली है करीब 1.8%। तो औसत तौर पर अगर आप एक 4 साल की डिग्री कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में तो आपके लिए सालाना 2,000 से 3,500 डॉलर महंगी हो जाएगी आपकी डिग्री स्टूडेंट फीस में। दूसरी चीज ये है कि अगर आप लोन पर हैं तो पहले ये थ्रेशहोल्ड जो है लोन को रीपे करने का था 55,000 डॉलर सालाना आए, इतनी इनकम होने पर ही आप लोन रीपे करना शुरू करते थे, अभी इसने काफी कट कर दिया है, तो इसका मतलब 42,000 डॉलर सालाना आय होने पर आपको ये लोन रीपे करना शुरू करना होगा, जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत कम बहुत जल्दी ही मतलब लोन रीपेमेंट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी डिग्री के लिए और उनकी फ्यूचर की जो भी बचत है उस पर प्रभाव डालेगा। अब तीसरा चीज ये है कि सरकार ने यूनिवर्सिटी से कहा है कि आप लोग 2.5% एफिशिएंसी डिविडेंड दीजिए, कहने का मतलब है कि आपको 2.5% कम सरकारी मदद मिलेगी, आप उतने में ही काम चलाइए, इससे यूनिवर्सिटीज के ऊपर एक सिग्निफिकेंट बेसिकली फाइनेंशियल दबाव पड़ेगा और इसका एक प्रभाव ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी शायद कुछ और फीस बढ़ाएं, स्पेशली जो आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं शायद उनको भी इसका असर दिखाई पड़ेगा क्योंकि उनको शायद हायर फीस चार्ज करनी पड़ेगी। दूसरा ये हो सकता है कि स्पेशली मेलबोर्न में यूनिवर्सिटी सेक्टर बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है लोगों का और शायद कुछ यूनिवर्सिटीज डाउनसाइज करना शुरू कर दें और मतलब कुछ स्टाफ को नौकरी से हाथ धोना पड़े यूनिवर्सिटी सेक्टर में, ये मतलब ओवरऑल टर्सरी सेक्टर के लिए अच्छी खबर नहीं है।
और छोटे उद्योगपति कैसे प्रभावित होंगे इस बजट से?
इनके ऊपर थोड़ा मिला जुला असर है, मतलब अगर आप देखिए तो नेट में कहना मुश्किल है कि थोड़ा सा फायदा है या थोड़ा सा नुकसान है, मतलब अगर आप देखिए तो अगर छोटा व्यापारी जैसा कि बजट में डिफाइन किया गया कि अगर आपका 10 मिलियन से कम का टर्नओवर है तो आप छोटे व्यवसायी माने जाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए एक तो टैक्स रिलीफ को उन्होंने कंटिन्यू किया है जो पिछले साल टैक्स रिलीफ दिया था कि आप 20,000 डॉलर तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, तो वो उन्होंने एक साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि 20,000 डॉलर तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वर्क रिलेटेड एक्सपेंस में, जिसके लिए कुछ प्रूफ नहीं चाहिए। दूसरा इसमें एक ये मतलब एक प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट ये है कि अभी उन्होंने कहा कि अगर आप किसी टेम्प्रोरी वर्कर को हायर करेंगे और ज्यादातर जैसा आपने कहा कि इंडियन ग्रोसरी स्टोर है या इंडियन रेस्टोरेंट है इसमें बहुत सारे लोग अप्रवासी भारतीय काम करते हैं, तो अक्सर इन जगहों पर काम करने वाले भी स्टूडेंट वगैरह होते हैं या फिर टेम्प्रोरी वीजा पर काम करने वाले लोग होते हैं, तो इससे बिजनेसमैन को करीब $1,800 पर ईयर लेवी देनी पड़ेगी टैक्स को अगर टेम्प्रोरी वर्कर को रखता है, और अगर परमानेंट स्किल्ड माइग्रेशन वर्कर को रखता है तो उसको वन ऑफ लेवी देनी पड़ेगी, ये करीब $5,000 तक की हो सकती है, तो ओवरऑल इससे जो है एक जो कहते हैं कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ जाएगा ऐसे छोटे बिजनेसमैन के लिए, तो एक तरफ बेनिफिट है टैक्स कट के रूप में, दूसरी तरफ ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है टेम्पोरी वर्कर हायर करने पे, नेट में क्या होगा कहना मुश्किल है।
महिलाओं और बुजुर्गों पर आप देख रहे हैं कुछ असर इस बजट का?
सरकार ने मतलब अगर आप महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस के नजरिए देखिए तो डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए सरकार ने जो है अलग से फंडिंग एलोकेट की है, तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली महिलाओं को मिलेगा। दूसरा एक अहम चीज ये है बजट में कि उन्होंने जो है वो NDIS को फुल्ली फंड करने का निर्णय लिया है, नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम। तो इसमें जो विकलांग लोग हैं या जिनके परिवार में कोई विकलांग है उनकी जो देखभाल करने वाले हैं उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था की गई है। तो अक्सर आप देखें तो महिलाएं ही जो है केयरर के रोल में होती हैं इस तरह की स्थितियों में, तो उनके लिए एक ये बेनिफिट जरूर है। पेंशन पर ध्यान दिया, पेंशन का एक्चुअली दो तरह से असर होगा, एक तो पेंशनधारियों पर ध्यान दिया गया है और उन्हें सरकार ये भी इंसेंटिव कर रही है कि वो अपना बड़ा घर बेच करके छोटे घर में आए और छोटे घर को वो अपने सुपर इनोवेशन में डाल सकते हैं जिससे उनको फायदा होगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है अगर देखा जाए तो पेंशनधारियों को ओवरऑल जो है वो गेन करने में मदद, मतलब ओवरऑल उनके लिए बेनिफिशियल है बजट।
अच्छा, बजट से पहले बहुत चर्चा थी कि घर खरीदना बहुत महंगा हो गया है, तो उसमें कुछ आसानी होगी, कुछ फायदा हुआ है
घर खरीदने को लेकर के? एक तो सरकार, मतलब दोनों ही स्टेट सरकार ने भी काफी पहल की है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अभी उसको जो है प्रमोट करने के लिए कुछ उपाय लिए हैं। तो इसमें जो है दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग सरकार ने की है। पहली चीज तो यह है कि सरकार ने एक बड़ा सराहनीय कदम ये उठाया है कि लोगों को बोला है कि भाई वो घर सेव करने के लिए अपना सैलरी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, मतलब कि अपनी जो सुपर इनोवेशन में है करीब $15,000 तक पर ईयर एक्स्ट्रा डाल सकते हैं घर का डिपॉजिट देने के लिए। तो पहले आदमी क्या करता था कि अपनी आफ्टर टैक्स इनकम से पैसा सेव करता था घर का डिपॉजिट लेने के लिए, लेकिन इस स्कीम में आप बिफोर टैक्स इनकम से अपना घर घर के लिए पैसा सेव कर सकते हैं। मुझे लगता है ये एक काफी अच्छा कदम है। दूसरी चीज सरकार ने ये की है कि जो एक काफी मतलब खबर आ रही थी कि हाउसिंग मार्केट इतना महंगा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे विदेशी निवेशक इसमें प्रवेश कर चुके हैं, बहुत सारे फॉरेन ओन्ड हाउसेज हैं जिनके ऊपर बेसिकली इन्होंने घर को कभी कीमतें काफी बढ़ा दी हैं। तो उसके ऊपर काफी सरकार ने लगाम कसने की कोशिश की है। सरकार ने ये कहा है कि अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर हैं, आपने कोई घर खरीद रखा है और उसे खाली रखा हुआ है तो आपको 5,000 टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा यह है कि अगर आप फॉरेन ओनर हैं और अगर आपका मेन रेजिडेंस है उसको आप बेच रहे हैं तो उस पर भी आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये दोनों तरफ से प्रयास ये है कि किसी तरीके से जो है इस मार्केट में थोड़ा डिमांड को कम किया जाए जिससे कि लोग अपना पहला घर खरीदने में थोड़ी सी सहूलियत महसूस कर सकें।
लेकिन किराया देने वालों पर कोई खास असर नहीं है?
नहीं, किराया देने वालों पर असर नहीं है। दूसरा, जैसे बहुत सारे आपके प्रवासी भारतीय हैं जो कि घर खरीद चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में लेकिन टेक्निकली वो अभी तक सिटीजन नहीं हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो वो भी बेचारे फॉरेन ओनर की तरह काउंट होंगे और शायद उनको भी अपना जो है घर बेचने पर कैपिटल गेन्स टैक्स के अंदर कवर किया जाए, ये शायद उनके लिए बुरी खबर हो सकती है।
और ऐसी कौन सी जगह है जहां से आपको लगता है कि एक आम ऑस्ट्रेलियाई की जेब कट सकती है?
एक सरकार ने कहा कि भाई वो जो है वो बैंकों को जो है वो बैंकों से कहा जा रहा है कि आप ये जो घाटा है उसको कम करने में मदद करिए और बैंकों के ऊपर 0.06% लेबी लगाई है जो सिर्फ 5 बड़े बैंकों के ऊपर ही पड़ रही है क्योंकि वही उतने बड़े हैं और इनके ऊपर और नए रेगुलेशन भी लगाए हैं कि एक नई अथॉरिटी बनेगी जिसके पास आप बैंक से रिलेटेड कोई भी शिकायत हो तो आप दर्ज कर सकते हैं। तो इसमें जो है एक तो ये प्लस पॉइंट लग रहा है कि सरकार का घाटा कुछ कम होगा और सरकार की उम्मीद है करीब 4 बिलियन इससे जो है सरकार इकट्ठा करेगी, लेकिन इसमें जो है एक अगर गौर से देखिए तो एक और भी चीज नजर आ रही है। नंबर एक कि जो आपके बैंक है इसमें से ये कुछ पार्ट इस लेवी का अपने कस्टमर्स के ऊपर डाल देंगे, तो शायद हम लोग देखें कि आपकी कुछ बैंक की फीस बढ़ गई है या फिर आपका क्रेडिट कार्ड का फीस बढ़ गया है या अकाउंट रखने का फीस बढ़ गया है। दूसरा ये है कि चूंकि बैंकों के ऊपर ये बहुत बड़ा सा टैक्स लगा है तो इससे बैंक की शेयर प्राइसेस में काफी तेजी से गिरावट आई है, तो जिन लोगों ने अपनी पैसे जो है बैंक के शेयर्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं उनके लिए शायद इसका नेगेटिव प्रभाव आएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो बैंक के ऊपर टैक्स लगाया है ये सिर्फ बैंक को प्रभावित करेगा, ये शायद आम जनता को भी प्रभावित करेगा।